प्रकरण 9 लुई ब्रेल व उनकी देन। अंध शिक्षण के विकास जो अब तक हो पाया है कौमा हो रहा है कौमा और होता रहेगा कौमा इसका आधार निःसंदेह ब्रेल लिपि है। पूर्ण विराम। कहने की आवश्यकता नहीं कि अंध शिक्षण में ब्रेल का स्थान अद्वितीय है। पूर्ण विराम। इस लिपि का विकास करने वाले लुई ब्रेल कौन थे? प्रश्न चिन्ह। उन्होंने इसका विकास कब और कैसे किया? प्रश्न चिन्ह। पैराग्राफ चेंज। ब्रेल कौमा इस शब्द का उच्चार करते ही लुई ब्रेल की सौम्य व शांत मूर्ति कौमा आश्चर्यचकित करने वाली उभरी हुई छह बिंदियां कौमा स्कूलों और विद्यापीठों में शिक्षण पाते हुए दृष्टिहीन विद्यार्थी कौमा एक चलचित्र की भांति आंखों के सामने आने लगते हैं। पूर्ण विराम। संसार की महान विभूतियों में लुई ब्रेल का अपना ही स्थान है। पूर्ण विराम। विश्व के दृष्टिहीन व्यक्तियों को जो देन उन्होंने दी कौमा उसके लिए युगांतर तक दृष्टिहीन उनके आभारी रहेंगे। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। लुई ब्रेल का जन्म एक साधारण फ्रांसीसी परिवार में 4 जनवरी 1809 को हुआ। पूर्ण विराम। इनके पिता कौमा श्री सिमोन ब्रेल पेरिस से लगभग 25 मील की दूरी पर कुप्रे नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे कौमा और जिनके जिन जिन बनाने का काम करते थे। लुई अपने भाई बहनों में सबसे छोटे परंतु सबसे अधिक बुद्धिमान थे। पैराग्राफ चेंज। एक दिन जब श्री सिमोन ब्रेल अपने कार्य में व्यस्त थे कौमा बाल लुई जिन बनाने की कार्यशाला में पिता का अनुकरण करते हुए छुरी से चमड़ा काटने का खेल खेल रहे थे। पूर्ण विराम। खेल खेल में छुरी उनकी आंख में चुभ गई जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आंखें खराब हो गई कौमा और वे दृष्टिविहीन हो गए। पूर्ण विराम। इस समय वे केवल 3 वर्ष के थे। पूर्ण विराम। इस दुर्घटना से संपूर्ण ब्रेल परिवार में शोक छा गया। पूर्ण विराम। परंतु ऐसा लगता है कि नियति ने अपने एक विशिष्ट उद्देश्य पूर्ति के लिए लुई को दृष्टिहीन बनाया था। हाइफन इनकी दृढ़ ज्योति लेकर संसार के दृष्टिहीनों को ज्ञान ज्योति देने के लिए विधि ने शायद यह विचित्र खेल खेला था। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। जैसे ही लुई पाठशाला जाने के योग्य हुए कौमा अपने भाई बहनों के साथ गांव की पाठशाला में जाने लगे कौमा और अन्य बच्चों की भांति स्कूल तथा बचपन का आनंद लेने लगे। पूर्ण विराम। 10 वर्ष की आयु में लुई शिक्षा के लिए पेरिस की अंध पाठशाला में भेजे गए। पूर्ण विराम। अंडर ब्रैकेट यही संसार की सर्वप्रथम अंध पाठशाला थी। ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर कुछ वर्षों के पश्चात उनकी कार्य कुशलता कौमा योग्यता और प्रतिभा ने उन्हें शिक्षक पद पर नियुक्त करा दिया। पूर्ण विराम। इसी पाठशाला में अपने विद्यार्थी जीवन काल में ही लुई ब्रेल ने उभरी हुई बिंदियों पर आधारित स्पर्श लिपि का विकास किया जिसे हम आज ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। लुई ब्रेल उस समय प्रचलित दृष्टिहीनों के शिक्षा माध्यम हाइफन उभरे हुए सामान्य लिपि के अक्षर से संतुष्ट नहीं थे। पूर्ण विराम। शिक्षा का यह माध्यम अपने आप में सीमित था। पूर्ण विराम। इस माध्यम द्वारा यद्यपि पढ़ना संभव हो चुका था कौमा किंतु लिखने के लिए हाइफन भावाभिव्यक्ति को मूर्त रूप देने के लिए कौमा दृष्टिहीनों के पास कोई साधन अथवा माध्यम नहीं था। पूर्ण विराम। ये उभरे हुए सामान्य अक्षर स्पर्श द्वारा पढ़ने में इतने सुलभ भी नहीं थे। पूर्ण विराम। कभी कभी तो एक वाक्य समाप्त होने पर्यंत बच्चे भूल जाते थे कि वाक्य का प्रारंभ कैसे हुआ था। पूर्ण विराम। बाल लुई प्रायः इस सोच में रहा करते कि शिक्षण के लिए कोई प्रभावी स्पर्श लिपि होनी चाहिए। पूर्ण विराम। उन्हीं दिनों लुई ब्रेल फ्रांसीसी सेना के एक अधिकारी कौमा कैप्टन चार्ल्स बार्बियर डेला सर अंडर ब्रैकेट चार्ल्स बार्बियर डेला शेरे ब्रैकेट क्लोज्ड हाइफन जिन्होंने सेना में गुप्त संदेश भेजने के लिए बिंदु पद्धति का विकास किया था। पूर्ण विराम। उनके संपर्क में आए। पूर्ण विराम। इस बिंदु पद्धति को चार्ल्स बार्बियर ने रात्रि लेखन अंडर ब्रैकेट नाइट राइटिंग का नाम दिया था, पूर्ण विराम। 14 उभरी हुई बिंदियों के आधार पर इस लिपि में वर्णमाला के अनुसार अक्षरों की रचना नहीं की गई थी, कौमा अपितु उच्चारण ध्वनियों के लिए चिन्ह बनाए गए थे, पूर्ण विराम। अतएव कौमा प्रत्येक शब्द में समाविष्ट प्रत्येक अक्षर का ज्ञान नहीं हो पाता था, पूर्ण विराम। विराम चिन्हों तथा गणित चिन्हों के लिए भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, पूर्ण विराम। यह लिपि दृष्टिहीनों के लिए संगीत लेखन की आवश्यकता पूर्ति करने में भी असमर्थ थी, पूर्ण विराम। इस पद्धति में 14 बिंदियों का समावेश था, हाइफन 2 चौड़ाई में और 7 ऊंचाई में, पूर्ण विराम। इतनी अधिक बिंदियों को कौमा और परिणाम स्वरूप किसी भी चिन्ह के इतने बड़े आकार को कौमा एक उंगली के अग्रभाग से छूकर कौमा उसे संपूर्णता में पहचानना और समझना बहुत कठिन था, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। ईस्वी सन 1821 में बाबियर की इस पद्धति का प्रदर्शन पेरिस की अंध पाठशाला में विद्यार्थियों के लिए किया गया, पूर्ण विराम। स्वयं चार्ल्स बाबियर ने अपनी पद्धति के स्पष्टीकरण में भाषण भी दिया, पूर्ण विराम। उनके मत में उनकी बिंदु पद्धति दृष्टिहीनों के वाचन लेखन के लिए प्रचलित हावी टाइप की अपेक्षा कहीं अधिक उपयोगी व प्रभावी थी, पूर्ण विराम। इस पद्धति के प्रदर्शन के बाद पेरिस की अंध पाठशाला के विद्यार्थियों में काफ़ी समय तक इसके गुण दोषों की चर्चा होती रही, हाइफन विचार विनिमय चलता रहा, पूर्ण विराम। इस विचार विनिमय में लुई ब्रेल ने विशेष रुचि ली, पूर्ण विराम। उन्होंने इस पद्धति को की सभी सूक्ष्म विशेषताओं को भली भांति समझा, पूर्ण विराम। इस पद्धति पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दृष्टिहीनों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए यह पद्धति अपने मूल स्वरूप में अपर्याप्त और अनुपयुक्त है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। दृष्टिहीनों के लिए इस बिंदु पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए लुई ब्रेल ने चार्ल्स बाबियर का ध्यान उनकी पद्धति की सब मर्यादाओं की ओर लक्षित किया, कौमा, और उन्हें दूर करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए, पूर्ण विराम। परंतु श्री बाबियर ने लुई ब्रेल को बालक समझकर उनके सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया, कौमा, और अपने ही मत पर स्थिर रहे, पूर्ण विराम। इस प्रकार जब चार्ल्स बाबियर ने अपनी पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया तो लुई ब्रेल ने इसी बिंदु पद्धति में से एक नवीन पद्धति का विकास करने का निश्चय किया, पूर्ण विराम। इस समय लुई केवल 12 से 13 वर्ष के थे, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। स्वयं दृष्टिहीन होने के कारण लुई ब्रेल यह अच्छी तरह जानते थे कि पुस्तकों का अभाव दृष्टिहीनों के शिक्षण में कितनी बड़ी मर्यादा है, कौमा, जिसके परिणाम स्वरूप उनका ज्ञान कितना सीमित रह जाता है, पूर्ण विराम। परंतु इस समस्या का समाधान ऐसी पद्धति के बिना असंभव था जिसके द्वारा दृष्टिहीन बालक सरलता और सहजता से लिख पढ़ सके, पूर्ण विराम। इसी कारण लुई ब्रेल ने अपना अधिक से अधिक समय ऐसी पद्धति के आविष्कार में लगाना आरंभ कर दिया, पूर्ण विराम। उन्होंने अपना यह महान कार्य संभवतः 1821 से 1822 में प्रारंभ किया था, पूर्ण विराम। इस समय वे स्वयं विद्यार्थी के रूप में शिक्षण पा रहे थे, पूर्ण विराम। केवल 12 से 13 साल की छोटी सी उम्र और इतने महान कार्य का प्रारंभ, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वे अपना संपूर्ण खाली समय इस पद्धति के विकास में लगाने लगे, पूर्ण विराम। अध्ययन में व्यस्त रहने के कारण दिन में उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिलता था, सेमिकोलन। अतः रात को जब उनके सब साथी निद्रा का आनंद ले रहे होते, कौमा, तब वे अपने आराम और स्वास्थ्य की परवाह न करके मोटे कागजों पर विविध प्रकार के बिंदु बनाने में लगे रहते थे, पूर्ण विराम। दिन में वे अपने मित्रों से इन बिंदियों को पहचानने का अनुरोध करके अपनी पद्धति की परीक्षा करते, कौमा, और उनमें जो त्रुटि दिखाई देती उसे दूर करने का प्रयत्न करते, पूर्ण विराम। वे इस कार्य में इतने अधिक मग्न हो गए कि सोते जागते, कौमा, खाते पीते, कौमा, प्रति क्षण उन्हें इसी का ध्यान रहता था, पूर्ण विराम। अनेक वर्षों तक वे इसी प्रकार कठोर परिश्रम तथा निरंतर साधना करते रहे, पूर्ण विराम। अंत में उनकी यह महान साधना सफल हुई और उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए एक नवीन प्रभावी लिपि का आविष्कार किया, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। लुई ब्रेल की यह पद्धति बहुत ही सरल है और वैज्ञानिक धरती पर बनाई गई है। पूर्ण विराम, इसका विकास करते हुए लुई ने दो बातों पर विशेष महत्व दिया और उन पर अपना ध्यान सतत केंद्रित रखा। एक, लिपि ऐसी हो जो स्पर्श द्वारा सुगमता और सहजता से पढ़ी जा सके ताकि वाचन में गति आए और दृष्टिहीनों की पहुंच पुस्तक रूपी ज्ञान के भंडार तक हो जाए। पूर्ण विराम। दो, इस लिपि के द्वारा दृष्टिहीन व्यक्ति स्वयं लिख सके कौमा ताकि वे अपने विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सके हाइफन पत्र व्यवहार आदि कर सके। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। इन दो उद्दिष्टों को समक्ष रखते हुए लुई ने कार्य का श्री गणेश किया। पूर्ण विराम। स्पर्श सुविधा कौमा सुगमता और सहजता के लिए लुई ने चार्ल्स बाबियर की केवल 6 बिंदियों का ही प्रयोग किया। पूर्ण विराम। उनके मतानुसार 14 बिंदियां केवल अनावश्यक ही नहीं थी सेमीकोलन तो स्पर्श की सुगमता में बाधा भी बन रही थी। पूर्ण विराम। उन्हें लिपि ऐसे चाहिए थी जिनका प्रत्येक अक्षर उंगली के अग्रभाग के नीचे आते ही आसानी से पहचाना जा सके हाइफन पढ़ा जा सके। पूर्ण विराम। एक अक्षर के बाद दूसरे अक्षर तीसरे अक्षर चौथे अक्षर कौमा पर उंगली सहज ही प्रवास करती हुई एक संतोषपूर्ण गति से पढ़ने लगे। पूर्ण विराम। चार्ल्स बाबियर की 14 बिंदियों की पद्धति द्वारा वाचन में उंगली को प्रत्येक चिन्ह के बोध के लिए ऊपर नीचे जाते हुए आगे बढ़ना होता था। पूर्ण विराम। उंगली की इस प्रकार की चाल वाचन के वेग पर अवरोध लगाती थी। पूर्ण विराम। अतएव कौमा उन्होंने केवल 6 बिंदियों पर अपनी पद्धति को आधारित किया और कार्य सुविधा लिए उन्हें नंबर दे दिए। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। लुई ब्रेल ने किसी प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण तो नहीं पाया था कौमा परंतु जन्मजात उत्तम शिक्षक थे। पूर्ण विराम। अंध बालक इस लिपि को आसानी से सीख सके कौमा इसलिए उनके विकास में उन्होंने तर्कनिष्ठ क्रम अपनाया और सुगम से कठिन की ओर का सूत्र ध्यान में रखा। पूर्ण विराम। इस तर्कनिष्ठ क्रम के अनुसार फ्रांसीसी भाषा के पहले 10 अक्षरों के लिए लुई ने केवल ऊपर की 4 बिंदियों का ही बिंदु 1, 2, 4, 5 ब्रैकेट क्लोज प्रयोग किया। पूर्ण विराम। नीचे दिए गए 10 अक्षरों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि इन अक्षरों का आकार छोटा है और स्वरूप एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। पूर्ण विराम माफ कीजिए कौमा ताकि स्पर्श द्वारा पहचानने में कठिनाई न हो। पूर्ण विराम। ये पहले 10 अक्षर पूरी वर्णमाला कौमा विराम चिन्ह आदि के आधार हैं और एक तर्कनिष्ठ क्रम से इनका विकास किया गया है। पूर्ण विराम। नीचे दी गई फ्रेंच ब्रेल वर्णमाला के कुछ आकारों को देखने से तर्कनिष्ठ क्रम का सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। कोलन अंडर ब्रैकेट ए के नीचे बाएं हाथ 1 बिंदी दाएं हाथ डैश इसके नीचे 2 डैश इसके नीचे 2 डैश बी के नीचे बाएं हाथ 1 बिंदी डैश नीचे बाएं हाथ 1 बिंदी डैश इसके नीचे 2 डैश सी के नीचे 2 बिंदी इसके नीचे 2 डैश फिर 2 डैश डी के नीचे 2 बिंदी डैश बिंदी डबल डैश ई डैश बाएं हाथ बिंदी नीचे बाएं हाथ डैश दाएं हाथ बिंदी नीचे 2 डैश एफ 2 बिंदी नीचे बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश नीचे 2 डैश जी के नीचे 2 बिंदी फिर 2 बिंदी नीचे 2 डैश एच बाएं हाथ 1 बिंदी दाएं हाथ डैश नीचे 2 बिंदी नीचे 2 डैश आई बाएं हाथ डैश दाएं हाथ बिंदी, नीचे बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश, नीचे डबल डैश जे, बाएं हाथ डैश दाएं हाथ बिंदी, नीचे दो बिंदी, नीचे दो डैश। ऊपर दिए गए प्रत्येक अक्षर के साथ बिंदु नंबर 3 जोड़कर अगले 10 अक्षर बनाए गए हैं। उदाहरण के, बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश, नीचे दो डैश, नीचे बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश। एल, बिंदी डैश बिंदी डैश बिंदी डैश। एम, डबल बिंदी नीचे डबल डैश, नीचे बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश। एन, डबल बिंदी नीचे डैश बिंदी, नीचे बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश। ओ, बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश, बाएं हाथ डैश दाएं हाथ बिंदी, नीचे बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश। पी, डबल बिंदी नीचे बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश, बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश। क्यू, डबल बिंदी नीचे डबल बिंदी नीचे बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश। आर, बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश, नीचे डबल बिंदी नीचे बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश। एस, बाएं हाथ डैश दाएं हाथ बिंदी, बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश, नीचे बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश। टी, बाएं हाथ डैश दाएं हाथ बिंदी, नीचे डबल बिंदी नीचे बाएं हाथ बिंदी दाएं हाथ डैश। इन ऊपर दिए गए प्रत्येक अक्षर के साथ बिंदु नंबर 6 जोड़कर लुई ब्रेल ने अगले 10 चिन्ह तैयार किए पूर्ण विराम। इस प्रकार उन्होंने इन 6 बिंदियों के विविध संयोगों से 36 चिन्ह बनाकर फ्रेंच भाषा की पूरी वर्णमाला कौमा विराम चिन्ह कौमा अंक कौमा उच्चारण चिन्ह आदि तैयार किया पूर्ण विराम। इतना ही नहीं तो संगीत लेखन के लिए भी चिन्ह बनाए। नीचे दिए गए ब्रेल लिपि का चित्र देखने से यह सिद्धांत स्पष्ट समझ में आ जाता है पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज, लुई ब्रेल ने इस लिपि का विकास करके ईसवी सन 1829 में इस पद्धति की रूपरेखा प्रकाशित की पूर्ण विराम। 1830 में तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर पिनियार ब्रैकेट डॉक्टर पिगनियार ने स्कूल की कुछ कक्षाओं में इस पद्धति के प्रयोग की अनुमति दे दी पूर्ण विराम। इतना ही नहीं तो कुछ समय के लिए इस लिपि को उनके स्कूल में शिक्षा के माध्यम के रूप में अपना लिया गया पूर्ण विराम। परंतु 1840 में प्राचार्य बदल जाने पर इसका विरोध प्रारंभ हुआ कौमा और स्कूल में इसका प्रयोग बंद कर दिया गया पूर्ण विराम। ईसवी सन 1837 में लुई ने इस लिपि की संशोधित रूपरेखा प्रकाशित कराई थी जिसमें वर्णमाला कौमा विराम चिन्ह कौमा गणित चिन्ह कौमा संक्षिप्त चिन्ह व संगीत चिन्हों की पूर्ण व्यवस्था की गई थी पूर्ण विराम। ईसवी सन 1837 में ब्रेल लिपि में पहली पुस्तक हाइफन फ्रांस का संक्षिप्त इतिहास रूपांतरित की गई पूर्ण विराम। यह पुस्तक ब्रेल साहित्य की पहली पुस्तक थी पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज, आज फ्रेंच तथा इंग्लिश ब्रेल का जो स्वरूप प्रचलित है उस लुई ब्रेल की उक्त संशोधित रूपरेखा से बहुत भिन्न नहीं है पूर्ण विराम। इस प्रकार लगभग 15 वर्ष तक निरंतर साधना तथा कठोर परिश्रम करने के पश्चात लुई ब्रेल ने संसार के समक्ष एक ऐसी स्पर्श लिपि प्रस्तुत की जिसके द्वारा दृष्टिहीन व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के अच्छी तरह पढ़ लिख सकते थे पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज, केवल वाचन के लिए एक प्रभावी लिपि ही तैयार नहीं की कौमा तो लेखन के लिए लुई ब्रेल ने लेखन हाइफन पार्टी भी बनवाई पूर्ण विराम। आज की लेखन पार्टी कौमा लुई ब्रेल द्वारा बनवाई गई लेखन पार्टी पर ही आधारित है पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज, अपनी पेरिस की पाठशाला में लुई ब्रेल ने इस लिपि का प्रयोग किया कॉमा और उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि यह लिपि अन्य प्रचलित लिपियों से कहीं अधिक अच्छी और प्रभावी थी, परंतु कॉमा फिर भी स्कूल के अधिकारियों के अमान्य करने पर मौन रहे पूर्ण विराम। स्कूल के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के साथ इस लिपि का प्रयोग करके यह सिद्ध हो चुका था कि यह नवीन लिपि प्रचलित उभरे हुए अक्षरों की अपेक्षा पढ़ने में कहीं सुलभ तथा लिखने में सक्षम थी पूर्ण विराम। इस लिपि में इतनी नवीनता और वैचित्र्य था कि स्वयं लुई ब्रेल को भी इसका प्रचार करने में संकोच हुआ पूर्ण विराम। इस लिपि के विकास ने दृष्टिहीनों के लिए शताब्दियों से बंद ज्ञान के द्वार खोल दिए थे कॉमा इसका पूर्ण अभ्यास शायद स्वयं लुई ब्रेल को भी न हुआ होगा पूर्ण विराम। आविष्कर्ता की स्मृति में यह लिपि ब्रेल नाम से प्रसिद्ध हुई पूर्ण विराम पैराग्राफ चेंज। लुई स्वभाव से विनम्र दयाशील उदार हृदय प्रसन्नचित्त शांत स्वभावी तथा निराभिमानी थे पूर्ण विराम। कहते हैं कि वे अपने चारों ओर आनंद को बिखेरते थे पूर्ण विराम। वे एक ऐसे शांत सागर थे जिसमें कभी तूफान नहीं आता हाइफन शांति का धाम थे वे कॉमा जहां दुखी और निराश व्यक्ति आशा और चैन पाने आते थे पूर्ण विराम। ईश्वर में अटूट विश्वास था उनका हाइफन परम भक्त थे पूर्ण विराम। उनकी सौम्य मुद्रा से आत्मा की पावनता छलकती थी कॉमा और ऐसी शांतता जो केवल सतचित आनंद के अनुभव से ही प्राप्त होती है पूर्ण विराम। उन्होंने अपने जीवन में दृष्टिहीन व दृष्टियुक्त मित्रों की कई प्रकार से सहायता की पूर्ण विराम। जहाँ तक उनकी नवीन लिपि का प्रश्न था कॉमा वे जानते थे कि वास्तव में यह लिपि दृष्टिहीनों के लिए अधिक उपयोगी थी कॉमा परंतु फिर भी इसकी स्वीकृति तथा प्रचार के लिए उन्होंने कभी हठपूर्ण प्रयत्न नहीं किए हाइफन शायद इसलिए कि यह उनके स्वभाव के विपरीत था पूर्ण विराम। हाँ कॉमा यह उनकी अंतरतम प्रबल इच्छा थी कि इस लिपि को दृष्टिहीनों के शिक्षण के लिए अपनाया जाए पूर्ण विराम। शायद वे यह देख पा रहे थे कि इस स्पर्श लिपि के द्वारा दृष्टिहीनों के लिए अज्ञान की अंधेरी रात का अंत हो रहा था कॉमा ज्ञान सुप्रभात की पौ फुट रही थी कॉमा माफ कीजिए पूर्ण विराम। परंतु उनकी यह इच्छा उनके जीवन में इच्छा ही रह गई पूर्ण विराम। इच्छा पूर्ति का सुख व समाधान उन्हें नहीं मिल पाया पूर्ण विराम। उन्हें स्वयं ही शायद कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने बिंदु लिपि का विकास करके एक महान कार्य कर डाला था हाइफन एक अद्वितीय संशोधन किया था पूर्ण विराम पैराग्राफ चेंज। ईस्वी सन 1852 में 43 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया पूर्ण विराम। 6 जनवरी के दिन संसार से एक महान व्यक्ति हाइफन महान संशोधक चल बसे हाइफन इसका किसी को आभास तक भी नहीं हुआ पूर्ण विराम। उनकी रचना हाइफन उनकी महानता का प्रमाण कॉमा उनके प्रति मूक श्रद्धांजलि के रूप में शेष रह गई पूर्ण विराम। संसार ने उनकी महानता कभी न जानी हो कॉमा ऐसा नहीं पूर्ण विराम। 1854 में लुई ब्रेल की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात पेरिस की अंध पाठशाला के विद्यार्थियों और शिक्षकों के आग्रह पर ब्रेल लिपि को इस पाठशाला में शिक्षा के माध्यम के रूप में अपना लिया गया पूर्ण विराम। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि ब्रेल की दृष्टिविहीनों के शिक्षण के लिए एकमात्र उचित व प्रभावी माध्यम है पूर्ण विराम। समय पाकर केवल फ्रांस ने ही नहीं हाइफन संपूर्ण जगत ने इस लिपि को मान्यता दी पूर्ण विराम। 9 जनवरी 1852 हाइफन उनके भौतिक शरीर को उनके अपने गांव कॉमा कुप्रे वापस लाया गया पूर्ण विराम। गांव के समाधि स्थल में हाइफन स्वजनों के बीच उनकी भी समाधि बनाई गई। पैराग्राफ चेंज। जनवरी 1952 में लुई ब्रेल की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात संसार के दूर सुदूर कोनों से अनेक दृष्टिहीन व्यक्ति अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने कुप्रे पहुंचे। पूर्ण विराम, फ्रांसीसी सरकार इनके देहावशेष को हूपरे के समाधि स्थल से निकालकर पेरिस के पैंथियान में ले आई, कौमा और देश के अन्य महान व्यक्तियों की समाधियों के मध्य स्थान देकर सम्मानित किया, पूर्ण विराम। संसार में शायद ये अकेले ही व्यक्ति हैं जिनकी दो समाधियां हैं, हाइफन, एक कूपरे में और एक पैंथियान में, पूर्ण विराम। कूपरे में इनके हाथ, कौमा, जिन्होंने इस अनोखी स्पर्श लिपि की रचना की थी, पूर्ण कौमा समाधि स्थित हैं, कौमा, और पैंथियान में शेष देहावशेष, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। स्मारक के रूप में कूपरे के ग्राम चौक में उनकी पाषाण मूर्ति तथा ब्रेल परिवार के घर में ब्रेल संग्रहालय की स्थापना की गई है, पूर्ण विराम। परंतु चिरस्थायी स्मारक तो उनकी उभरी हुई छह बिंदियां ही हैं, कौमा, जो दृष्टिविहीनों के जीवन में, हाइफन, उनके एकाकी क्षणों में आनंद तथा ज्ञान का स्रोत बनी रहेंगी, हाइफन, ज्ञान का ज्वलंत प्रकाश स्तंभ बनकर युगांतर तक उनके जीवन का मार्ग आलोकित करती रहेंगी, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। आज विश्व भर में अनेक दृष्टिहीन व्यक्ति शिक्षण के उच्चतम शिखर तक पहुंच चुके हैं, कौमा, और पहुंचते रहेंगे, हाइफन, यदि यह संभव हो सका है, कौमा, और संभव होता रहेगा तो ब्रेल के कारण, हाइफन, माफ कीजिए, पूर्ण विराम, विश्व की सभी सीमाएं पार की हैं, कौमा, इस लिपि ने, पूर्ण विराम। संसार का कोई ऐसा देश नहीं जहां ब्रेल का प्रयोग न हो रहा हो, हाइफन, कोई ऐसी भाषा नहीं जो इस लिपि में न लिखी जा सकती हो, हाइफन, सच्चे अर्थों में ब्रेल विश्व लिपि बन चुकी है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। निसंदेह लुई ब्रेल ने दृष्टिहीनों के लिए शताब्दियों से बंद ज्ञान के द्वार खोल दिए, पूर्ण विराम। अंध शिक्षण में एक नए युग का प्रारंभ किया, पूर्ण विराम।